نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے کلام مجید میں سے ایک آیت کو سننے اور سنانے کی توفیق دی. ابھی جو آیت سامنے آپ کے رکھی یہ سورۃ البقرہ کی آیت 184 ہے، اور اس آیت میں لفظ بھی تصومو آیا، روزے کا ذکر ہے. تو ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں روزے کا تذکرہ یعنی رمضان کا جو ذکر ہے وہ سورۃ بقرہ کی آیت 183 سے اگلی چند آیتوں میں یہ مضمون جمع کر دیا گیا. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک مستقل آیات کا مجموعہ ہے، جس میں اتنی مختصر سی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کے احکامات، اس کی فرضیت، اس کی تدریج کہ پہلے روزہ کیسے تھا پھر بعد میں کیسا ہوا، یہ سب بھی بتا دیا. اسی میں اعتکاف کا تذکرہ، اسی میں دعا کا ذکر ہے. یعنی یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اگر ایک دریا کو کوزے میں بند کرنا ہو تو واقعی بعض اوقات قرآن پاک کی چند آیات کافی ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ اشارتاً ذکر ہے، لیکن اگر احکام کے طور پہ دیکھیں تو جو شخص اس حصے کو مس کر دے وہ کہہ سکتا ہے کہ روزہ فرضی نہیں ہے کیونکہ میں نے تو پورے قرآن میں نہیں پڑھا. تو آئیے آج ہم تھوڑا سا جس موضوع پہ دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ روزہ ہماری عادت ہے یا عبادت ہے. آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ بچپن سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ لفظ ہماری وہ اندر چھپے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے. بلکہ مجھے تو یہ لفظ بولتے ہی وہ ضرورت رشتہ کا اشتہار یاد آ جاتا ہے، صوم و صلاۃ کی پابند لڑکی چاہیے، ہیں نماز روزے کی پابند لڑکی چاہیے. لیکن کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن یہ عادت بن گئی ہے؟ یاد رکھیے کہ ایک بہت بڑی آزمائش انسان کی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کثرت سے کرے تو وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، یوز ٹو ہو جاتا ہے. جب عادت عبادت بن جائے تو مزہ تو یہ ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا آتا ہے کہ عبادت عادت بن جاتی ہے. اب یہ تھوڑی سی تکرار ذرا بھاری پڑ رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر عبادت جو بھی کہی ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے بھی کرنے کا حکم دیا ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے. بٹ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی کام کو مسلسل کرتے ہیں تو اس حکمت کو سمجھ نہیں پاتے. مثلا اللہ تعالیٰ نے عبادات کے اندر ہمیں کیا کہا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو تو ہم پیچھے کر کے سائڈ پہ صرف اگر عبادات میں دیکھیں جو نظر آنے والی چیزیں عبادت کے نام پہ، تو اس میں پہلی چیز نماز ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سسٹرز ماشاءاللہ پانچ وقت کی نماز کی پابند ہیں، ایسے ہی ہے. اور میرا گمان ہے کہ ابھی آج جمعہ کی نماز آپ میں سے بہت ساری سسٹرز نے مسجد میں پڑھی، نہیں پڑھی تو گھر میں پڑھی. کسی مجبوری کے علاوہ ہم نماز نہیں چھوڑتے. ایک بڑا پرسنل سوال کروں، ابھی ابھی ظہر کی نماز جو پڑھ کے بیٹھے ہیں، آپ نے اس میں اللہ سے کیا باتیں کی، اس کی روح کیا تھی، اس میں سے آپ نے کیا پایا؟ آپ کہیں گے میں نے چار فرض پڑھے، چار سنت پڑھی، دو سنت پڑھے، دو نفل پڑھے. اگلا سوال پوچھتی ہوں، اچھا جی آپ نے اس میں کیا صورتیں پڑھی، آپ وہ بھی بتا دیں گے مجھے. ہم تو ویسے کل ہو ہی پڑھتے ہیں. بہت عرصہ تک تو ہمیں یہ پتہ ہی تھا کہ صرف نماز میں کل ہو اللہ پڑھتے ہیں، اور کل ہو اللہ کے باہر کوئی سورت پڑھی تو بدعت ہے. سورۃ فاتحہ، پھر کل ہو اللہ، پھر سبحان اللہ، پھر اللہ اکبر، التحیات، اشہد اللہ الہ، السلام علیکم، السلام علیکم. یہ سب آپ کو پتہ ہے. آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی، आपने नमाज़ पढ़ते वक्त किबला रुख मुँह किया, वुज़ू किया, सब कुछ किया आपने, फिर उसके बाद आप जाए नमाज़ पे खड़ी हुई, किस रकत में क्या पढ़ा, ये सब कुछ पता चल जाता है। बस दफ़ा जहन, दिल, दिमाग कहीं और भी होते हैं, लेकिन हमें कभी गलती नहीं लगी। अल्लाह अकबर के बाद हम सुबहानक अल्लाहुम्मा के बाद फ़ौरन सूरह फातिहा ही पढ़ते हैं। हम में से कभी किसी ने गलती से भी सूरत अल-क़ारिया नहीं पढ़ी वहाँ, ऐसा है ना? कभी हमें सोचना नहीं पड़ा क्या पढ़ूँ, सूरत ज़िलज़ाल नहीं पढ़ी। क्यों पढ़ते हैं सूरत फातिहा? आदत बन गई है, ये है नुक्ता। आदतन सूरत फातिहा नमाज में पढ़ना और चीज़ है, और इबादतन किसी सूरत को, किसी एक्ट को करना, ये बिल्कुल फ़र्क चीज़ है। जब कोई चीज़ कसरत से होती है तो उसकी तासीर ख़त्म हो जाती है। इस तासीर को कायम रखने के लिए तवज्जो और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आज मौजू नमाज का नहीं है, वरना मैं सिर्फ नमाज पे बात शुरू कर दूंगी तो हम शायद 1 घंटा इस पे बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह, एक लेक्चर में मैंने 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में से हर एक की अंदर हिकमत क्या है उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर नमाज के बारे में सुनना समझना चाहें तो वहाँ पढ़ें। आज चूँकि हमारा मौजू रमज़ान से मुतल्लिक है, और आप कहेंगे कि रमज़ान की बातें अभी से क्यों शुरू हो गई, तो मैं कहूँगी कि रमज़ान करीब है। आप कहेंगे करीब है, अब तो सांस ही खुश्क हो जाएगी, कितना को करीब है? मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आज कौन सी डेट है इस्लामी महीने की? नहीं पता। और आज से अगर 2 माह बाद पूछूंगी तो सबको बताओगी? आज 17 रजब है। रमज़ान के अलावा क्या कोई ऐसा महीना है जब हमें पूरे महीने की तारीखें पता हो? आज पहली, दूसरी, बल्कि 2-4 दिन पहले ही फिक्र लग जाए, हाय चांद तो नहीं आया, आ तो नहीं गया चांद, है कि नहीं? रमज़ान ये एक ऐसा महीना है कि जिसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा पता होता है। अल्लाह ताला ने इसीलिए शायद कह दिया कि यामम मादूदात, गिनती के दिन है, ज़्यादा फिक्र नहीं करो, यानी गुजर भी जाएंगे, हुक्म भी है और इसमें तसल्ली भी है। हुक्म ऐसे है कि अगर इन दिनों में रोज़ा मिस किया तो बाद में रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे आ रहा है फमन काना मिनकुम मरीदा न वला सफ़रन फ़ायदतु मिन अय्यामिन अखर, तुम में से कोई बीमार हो जाए या सफ़र पर चला जाए तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे, हुक्म है। रमज़ान के छुट्टे हुए रोज़े रखने पड़ेंगे। अभी भी अगर मैंने आपने 2016 का कोई रोज़ा छोड़ा था तो रखने का मौका मौजूद है। रमज़ान से पहले पहले पिछले साल के छुट्टे हुए रोज़े रखने चाहिए, बाद में रखेंगे तो पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। पीरियड्स के छुट्टे हुए रोज़े रखने होते हैं, नमाज माफ़ है, रोज़ों में अल्लाह ने कहा कि रखो, और क्या बड़ी बात है पूरे साल में 6-7 रोज़े दोबारा रख लें तो कोई बड़ी बात नहीं होती। अब आप देखिए कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे रमज़ान के छुटे हुए रोज़े हैं, उसको पूरा करो। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा गुमान है कि उम्मत मुस्लिमा छुटे हुए रोज़े पूरे करती है, और कुछ लोगों का हाल यह है कि वो जब बीमार हों, और वो कहते हैं इससे ज़्यादा खूबसूरत बीमारी ज़िंदगी में आनी कोई नहीं जो रमज़ान में आई, मैं बीमार हूँ, क्या हो गया? वो मेरे सर में दर्द है, तो फिर मैं रोज़ा छोड़ सकती हूँ? मुझे चोट लगी हुई है, कहाँ लगी? ये देखो उंगली पे, ये कट लग गया था छुरी से, रोज़ा छोड़ देते हैं। और कुछ लोग तो जान के सफ़र का प्रोग्राम बना लेते हैं रमज़ान में कि अवला सफ़र है, लेकिन अल्लाह ने सारी का फ़ायदा तुम्हें नया में नखर, बहाने से छोड़ दो रोज़ा, कोई नहीं, तुम बीमार हो, कोई कहता मैं नफसियाती बीमार हूँ, कोई कहता मैं साइकोलॉजिकल बीमार हूँ, बीमारी की भी बड़ी किस्में हैं, और सफ़र पे जाओ, लेकिन याद रखो फ़ायदा तुम्हें नया में नखर। और ये चीज़ आप सब ने देखी होगी, मैं तो ख़ुद इसके ऊपर गवाही दे सकती हूँ। रमज़ान में 30 रोज़े रखने आसान, और बाद में छुटे हुए 6 रोज़े रखने मुश्किल, सच है? इसका आपने एक्सपीरियंस करना हुआ तो इस साल शवाल के 6 रोज़े रख के देखिएगा। आप रख रही हैं घर में, किसी का रोज़ा है किसी का नहीं, आप कहती मेरा आज, जिन घरों में इख्तमाम के साथ ईद के फ़ौरन बाद इकट्ठे रख लिए जाते हैं ना, वो आसान है, क्योंकि बच्चों को पता है कि पकौड़े समोसे बन जाएंगे, मिल जाएंगे रोज़े के बाद। लेकिन वो रोज़ा जो आप रोज़ा रखें और बाकी लोग ना रखें, बड़ा मुश्किल होता है। ईद की पार्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं, और कई लोग ईद की पार्टी में जाते हैं और कहते हैं नहीं जी हमारा शवाल का रोज़ा है, मुश्किल लगता है। तो ये 30 रोज़े इकट्ठे रख लेंगे तो आसान है, लेकिन अगर 30 छोड़ दिए तो बाद में 365 दिनों में से 30 निकाल दें, तकरीबन 330 दिनों में इन 30 रोज़ों को रखना बड़ा मुश्किल होगा। तो बेहतर है कि साथ ही रख लिया जाए। हाँ, फिर वालल्लज़ीना युतीकूनहु फ़िदयतुन तआमु मिस्कीन, अगला हिस्सा आयत का क्या बताता है कि तुम में से जो ताकत भी रखता है ना, वो भी चाहे तो मिस्कीन को खाना खिला दे। ये क्या बात हुई, जी, ये इब्तदाई हुक्म था। शुरू में यूज़ टू करने के लिए, आदत बनाने के लिए ये हुक्म दिया गया कि रोज़ा फ़र्ज़ है, बट रोज़ा रख लो या मिस्किन को खाना दे दो। अब क्या हुआ, अमीरों ने खाने खिलाने शुरू कर दिए, गरीबों को अपने साथ दूसरों के भी रखने पड़े। लेकिन सोसाइटी में एक चेंज एक्सेप्ट होती गई। जब थोड़ा सा ट्रेनिंग सेशन हो गया तो अब कहा नहीं, फमन ततव्व खैरन फहुव खैरुल लहू, और जो कोई खुशी से खैर करेगा, भलाई करेगा, वो उसके हक में बेहतर है। यानी ठीक है, ऑप्शन दी जा रही है तुम्हें किसी खाना खिलाने की, बट रोज़ा रखना बेहतर है। लेकिन वो लफ्ज़ जिससे रोज़ा फ़र्ज़ हुआ वो अब बोलने लगी हूँ, वन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमुन। ये हैं वो चार पांच लफ्ज़ इस आयत के, आयत 184 के, जिससे रोज़े की फर्जियत साबित हुई। कौन सी फर्जियत? आज के दौर की। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। आयत 183 में रोज़े की फर्जियत हो गई थी, लेकिन रोज़ा हमारे पास मुख्तलिफ मराहिल से गुजर के आया। पहले आपने देख लिया कि पिछली उम्मतों के रोज़े थे। याद रखिए, हर उम्मत पे रोज़ा फ़र्ज़ था। कहते हैं सबसे पहले हज़रत नूह की उम्मत ने रोज़ा रखा था, और शायद दो रोज़े उन पर फ़र्ज़ थे या तीन रोज़े फ़र्ज़ थे। अल्लाह के नबी इस्लाम से पहले भी रोज़े रखते थे, तो नफली रोज़े थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर आज के इस रोज़े पर रखा और कहा कि अगर तुम रोज़ा रखते हो तो तुम्हारे हक़ में ये बेहतर है। अब आप देखिए कि जब रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, अब मैं और आप शुरू से अपनी अपनी ज़िंदगी का वो दिन याद कीजिए जब आप बड़े शौक़ से रोज़े रखते थे। बचपन में रोज़ा रखने का बड़ा शौक़ था, और माँ बाप चुपके चुपके सहरी में खाना खाते थे, और कभी आँख खुल जानी तो कहना कि मुझे सुलाकर आप रोज़ा रखते हैं। फिर कुछ बच्चे कहते हैं रोज़ा रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, मुँह में रखा हुआ है, सारा दिन ही रखते रहते हैं, है ना, ये सारे तजर्बे। लेकिन सवाल कीजिए कि क्या रोज़े से मुझे कुछ मिलता है? क्या मैं आदतन रोज़े रखती हूँ या इबादतन रखती हूँ? क्योंकि जब हम किसी इबादत को आदतन करते हैं ना, तो हमारे उसके अंदर से रूहानियत ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल आदत के तब एक ऑटोमेशन चल पड़ती है, रोज़ा रखा सो जाओ। कुछ लोग अल्लाह के बंदे रोज़ा रख के सोते हैं, और इफ्तारी पे उठाओ उनको, खबरदार किसी ने नमाज में भी उठाया, क्योंकि जी रोज़ा रखा हुआ है। कुछ माएँ इतना प्यार करती हैं अपने बच्चों से, वो कहती हैं बस रोज़ा रख के सोया हुआ, अब इसको मैं उठाऊँगी नहीं, अब मेरे बच्चे ने स्कूल जाना है तो मैं इसको रोज़ा नहीं रखाऊंगी। तो ये सब नहीं। तो आइए ज़रा थोड़ा सा देखें कि रोज़ा हमसे चाहता क्या है। आप कहेंगे कि अभी तो 17 रजब है, अभी से शुरू हो गए, अभी तो रजब के कुछ दिन बाकी, फिर इसके बाद शाबान आएगा पूरा, फिर कई रमज़ान है। लेकिन बिलीव मी, जो काम जितनी तैयारी के साथ किया जाए उतना उससे फ़ायदा होता है। आज तो माशाल्लाह 17 रजब है। मुझे याद है कि अभी से 15-20 दिन पहले एक लेक्चर, रमज़ान दूर नहीं है, ये ओस्लो से किया था, तो वो माशाल्लाह काफ़ी ग्रुप्स में मैंने उसका लिंक देखा। 8-10 मिनट की बातें थी, लेकिन टिप्स दी थी कि अभी से अगर हम तैयारी कर लें, हम चाहते हैं ना कि हमारा रमज़ान बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं, तो आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आज ख़ास तौर पर हम अगर इस चीज़ पर बात करें कि रोज़ा रखना, इसके अंदर हिकमत क्या है, चलिए आप चंद लोगों से पूछिए, मुख्तलिफ लोग जो आपको अपने इर्द गिर्द दिखते हैं, आप, मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप उसका जवाब लिखिएगा खुद ही इंशाल्लाह। रोज़े क्यों फ़र्ज़ हुए? अगर आप में से कुछ साथी अभी भी इसका जवाब देना चाहें तो हैंड रेज करें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपका भी इनपुट साथ रहेगा तो अच्छा लगेगा। रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए? तकवा के हसूल के लिए, ठीक है। तकवा क्या होता है और कितना हासिल हुआ आज तक, और हर साल के रमज़ान से पहले और रमज़ान के बाद तकवा का लेवल चेक करना चाहिए कि नहीं? इन्होंने कहा कि रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया कि तकवा हासिल करे, मान लेते हैं इन्होंने सही जवाब दे दिया, इसलिए गलत जवाब नहीं लेते। कुछ ने तो ये कहना था डाइटिंग के लिए, कुछ ने कहना था वो खाना नहीं होता था ना, गुर्बत बड़ी थी इसलिए। हैं, मैंने एक जुमला, वही जो अब रमज़ान दूर नहीं, उसमें एक जुमला बोला था, वही आपको बताऊं कि रमज़ान क्यों आता है। रमज़ान का पैगाम क्या है कि बेआराम होना सीखो, रूटीन तोड़ो, रात को दिल नहीं कर रहा खाओ, जब भूख लगे नहीं खाना, समझ रहे? यानी रमज़ान हमारी मर्जियों को तोड़ने आता है। अब इन्होंने जवाब दिया कि कुरान पाक में आता है कि लअल्लकुम तत्तकून, तकवा हासिल हो। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आज है रजब की 17, कोई ऐसा क्राइटेरियन, कोई ऐसा मेयार है कि जहाँ जाकर मैं आज के दिन का तकवा नोट कर लूँ? जैसे हम अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, अपना शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। आजकल तो वो नाखूनों के अंदर के वाइटामिन डीज भी चेक करके वो बता देते हैं, माँ के पेट के बच्चे के अंदर के वाइटामिन चेक कर करके उनको सप्लीमेंट्स देते रहते हैं। क्या क्राइटेरियन है कि जिससे पता चले कि 2016 के रमज़ान के बाद मेरा ही तकवा इस वक्त यहाँ पहुँच गया, अब मुझे इसको बढ़ाकर अगले पे लेके जाना है। आपने देखा होगा ना कि कुछ चीज़ों में डॉक्टर परहेज़ करवाते हैं, वेट गेन होने लगे तो कहते हैं वेट कंट्रोल करें, मीठा ना खाएं, ऑयल ना खाएं, तो फिर खाना क्या, फिर ज़िंदगी में खुशी क्या रहेगी? हैं, अगर मीठा नहीं खाना और ऑयली नहीं खाना और स्पाइसी नहीं खाना तो हम नहीं जीते। ऐसे ही हाल है ना हम पाकिस्तानियों का, मोस्ट लाइकली हमारी ज़िंदगी ही नहीं दो तीन टेस्ट के साथ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि डॉक्टर आपको किसी चीज़ की परहेज़ कब देते हैं? जब वो महसूस करते हैं कि ये चीज़ कम है या ये चीज़ ज़्यादा है। बस जब आपने सप्लीमेंट्स की सूरत में लोगों को विटामिन्स खाते देखा होगा, सर्बेक्स टी एक बड़ी मशहूर ख़तरनाक सी गोली मुझे आज भी याद है, ग्लास में डाल के लोग पानी में घोल के पीते थे, विटामिन डी की गोलियाँ, कैल्शियम की गोलियाँ और न जाने क्या कुछ। अल्लाह सुबहान तआला आपको मुझे रमज़ान के ज़रिए तकवा का सप्लीमेंट देते हैं। तकवा क्या होता? अब मैं आपसे ही सवाल जवाब करती जाऊँ तो मुझे लगता है कि आप लोग ज़्यादा सीखेंगे बजाय इसके कि मैं ही बोलती जाऊँ। तकवा क्या होता है? अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत। और क्या होता है तकवा? ठीक है, शाबाश। गॉड कॉन्शियसनेस, यानी अल्लाह इज़ वॉचिंग मी, अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। ठीक है, और परहेजगारी, ये बड़ा मुश्किल मारूफ लफ्ज़ है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, यानी अल्लाह ताला के लिए ऐसी चीज़ों को छोड़ना। और भी कोई तारीफ है इसकी? जी, यानी सिराते मुस्तकीम की तारीफ ये बता रहे हैं कि कांटों वाले रास्ते पे से गुजरना। तो मैं आप सबसे एक सवाल करूं, अपनी अपनी उम्र का अंदाज़ा हम सब लगाएं, 10 साल पिछले निकाल दें बचपन से, उसके बाद 25, 30, 40, 50 रमज़ान गुजरे, क्या ये कैफियत ज़िंदगी में पैदा हुई? बात समझ है? हर रमज़ान के बाद इंसान का एक लेवल ऊपर होना चाहिए कि नहीं? अगर रोज़ा आदतन रखा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर ईद की पार्टियाँ ही ऐसी होंगी कि फिर उसके लिए दोबारा ही माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी। फिर ईद के बाद जितनी शादियाँ ब्याह उसके अंदर जो रसूमात है वो तो सारी की सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर रोज़ा इबादत के तौर पर रखा है ना, तो फिर रमज़ान के बाद ज़रूर एक शख्सियत नहीं बनेगी। रमज़ान अगर शऊर के साथ गुजर जाए तो उसके बाद ज़िंदगी में ज़रूर तब्दीली आती है। रमज़ान जो है ना, ये इंसान को एक नया चांस देता है कि तुम अपने आप को बदलो। क्या ये ज़्यादती नहीं है कि एक इंसान जो 30, 40 साल से रोज़े रख रहा है, तो ना तो ये शऊर आए कि कांटों भरी शाख से गुजर रहा हूँ, और ना गुनाहों के मौक़ों पर रब याद आ जाए, और ना परहेजगारी आ जाए, और ना ये महसूस हो कि भाई इस दुनिया से बस उतना ले लो जितना कुछ चाहिए। क्या आम तौर पे मुसलमानों को देखकर आपको एहसास होता है कि वाकई ये रोज़े रखने वाली उम्मत है? देखिए, चंद लफ्ज़ों में अगर आप देखें ना, तो एक वो ज़िंदगी होती है जो हम रमज़ान में गुजार रहे होते हैं, और एक होती है जो रमज़ान से एक्स्ट्रा होती है, यानी पहले, बिफोर और आफ्टर, और एक ड्यूरिंग। ये तीन लफ्ज़ है ना, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। अगर हम पहले ड्यूरिंग को देखें तो रमज़ान में मोस्टली हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाती है? रातों को उठते, तहज्जुद फ़र्ज़ नहीं है, राइट? और रमज़ान में जब तरावी पढ़ ली जाती है तो फिर तहज्जुद की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है कि रमज़ान में तरावियां भी पढ़ते हैं और उसके बाद तहज्जुद भी पढ़ते हैं। चलिए, वो पढ़ना ना पढ़ना दूर की बात है, 20 पढ़े, 8 पढ़े, 11 पढ़े, उसको नहीं छेड़ते, पढ़ते हैं ना। फिर उसके बाद आप देखिए कि नॉर्वे में तो 20 घंटे का भी रोज़ा था पिछले साल, 21 घंटे तक भी जाता है, कुछ खाए पिए बगैर गुजारा करते हैं ना। आम दिनों में हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, करते हैं ना ये सब कुछ। फिर आप देखिए कि कुरान के साथ ताल्लुक़ जुड़ जाता है, एक दिन में एक दो तीन तीन सवारे, चार चार सवारे भी लोग पढ़ लेते हैं। जब रमज़ान ख़त्म होता है उसके बाद एकदम क्या हो जाता है? मैं एक जुमले में बता सकती हूँ कि एक चेंज आती है सिर्फ हमारे घरों में, जिसकी वजह से वो सिस्टर जो पूरा रमज़ान दौरे कुरान में घरों से निकल रही हैं, पढ़ रही हैं, सीख रही हैं, मस्जिदों में तरावी भी साथ पढ़ रही हैं, वो बिल्कुल ऐसे लगता है मजबूर हो गई हैं। और वो एक जुमला क्या है कि हमारा चूल्हा जल जाता है। रमज़ान में अगर वाकई देखा जाए और अगर ज़ुबान दे दी जाए तो हमारा चूल्हा शुक्रिया अदा करता है हमारा, कि थोड़ी देर मुझे ठंडा कर दिए। वो उम्मत जो एक ऐसे नबी की उम्मत है कि जिसके घर में दो दो महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। और आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से पूछा लोगों ने कि फिर आप खाते क्या थे, आपका गुजारा कैसे होता था? तो कहने लगी कि हम दो काली चीज़ों पे गुजारा करते थे। काली चीज़ें और दो क्या? अल अस्वदान, अस्वद सूद काले को कहते हैं, ये सूद लफ्ज़ भी काला ही है, काला धन। दो चीज़ें क्या हैं? पानी और खजूर। खजूर तो काली होती है, पानी काला कैसे हुआ? उसमें फिर दो राय हैं। पानी भी जो मिलता था वो भी रेत मिला हुआ होता था, और या ये कि वो सीखे तगलीब है कि खजूर की वजह से पानी को भी काला कह दिया। जिस नबी की उम्मत के घर ये हालात हों, आप मुझे बताइए कि उस उम्मत को एक पूरा महीना उसी ट्रेनिंग सेशन से गुजारा कि तुम्हें नबी की ज़िंदगी भी तो याद आए। और वल्लाही हम फिर भी नहीं कम करते। हाँ, टाइम बदल जाते हैं, ड्यूरेशन बढ़ जाता है खाने का, कसर हम इफ्तारी और सहरी पे पूरी कर लेते हैं, लेकिन क्या हम रमज़ान के बाद एक नई शख्सियत में ढले होते हैं? इस साल अभी से 1.5 महीना तकरीबन, अभी से अपने लिए प्लानर बनाएं, इस साल के रमज़ान के रोज़े आदतन नहीं रखने, इबादतन रखने। देखिए, बड़ी बड़ी बातें ना करूं, छोटी छोटी बातें बेहतर हैं। सहाबा कराम वो गिरोह था जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर इस दीन की नशर व इशात और इसकी बेस में काम किया। जैसे अगर आप कहते हैं कि ये जगह, ये हॉल जहां हम बैठे हैं, ये कैसे बना, तो जो साथी इधर पिछले 10-15 साल से रहते हैं वो सुनाएंगे, पहले ये था फिर वो हुआ, ये मस्जिद पहले छोटी थी फिर बड़ी हुई। ऐसे ही होते हैं ना, हर चीज़ के मराहल होते हैं, घर भी ऐसे ही बदलते हैं बनते हैं। दीन को बनाने में, दीन की इमारत की तामीर में जिन हस्तियों ने काम किया, उसमें सहाबा कराम को कोई भूल नहीं सकता। हम एक लम्हे के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को एक साइड पे भी कर दें कि आप तो नबी थे, आपको तो अल्लाह खिलाता था, आपके साथ तो जिब्राइल थे, अल्लाह ने आपके नफ्स के ऊपर काबू पा दिया आपका। हम अबू बकर सिद्दीक से शुरू करके अगर देखें, सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर सिर्फ आखिरी 10 साल की बात करूं, जो मदनी दौर था, मक्की दौर नहीं, वो तो मारे खाने का दौर था। इंशाल्लाह ये सीरीज़ जो आज शुरू हुई है हमारी, ये चलती जाएगी अगले 8-10 दिन तक। आप ऑनलाइन सुनिएगा, डिफरेंट जगहों से जो लेक्चर आएंगे, इसमें एक पूरा लेक्चर सहाबा का रमज़ान कैसा था, अगर सुन सके तो ज़रूर सुनिएगा। यकीन करें कि आंखें भीग जाती हैं। तब्दीलियाँ उन्होंने लाए, जंगें उन्होंने लड़ी, हिजरतें उन्होंने की, कुर्बानियाँ उन्होंने की, और ये सब कुछ रमज़ान में रोज़े की हालत में हुआ। वजह क्या? कि उन्होंने रोज़ों को इबादत के तौर पे रखा था, आदत के तौर पे नहीं रखा था। अगर आपने कुरान पाक में सूरत तौबा की तफसीर पढ़ी या सुनी हो, और उसमें आपको एक गजवे का तذکرہ मिलता है, गजवे तबुक, जैशुल उसरा, तंगी वाला लश्कर, 18 लगाए, 18 लोगों के हिस्से में एक ऊँट आया, यानी 17 लोग बारी बारी टर्न्स लेते चलते पैदल, और फिर 17वें के बाद फिर उनकी बारी आती, लेकिन निकले। फसलें पकी भी, खड़ी फसलें थी, सारे साल की पूंजी थी, यानी उस वक्त अगर फसल नहीं काटी ना तो माने कि अगला पूरा साल फाका। गर्मी शिद्दत की, और सबसे मज़े की बात है कि दुश्मन आया कोई नहीं, सिर्फ धमकी आई है दुश्मन की। जैसे आज अखबार में खबर छप जाए पाकिस्तान पर फला मुल्क हमला करने वाला, तो धमकियाँ तो हम बड़ी सुनते हैं, सिर्फ एक खबर आई है कि कुछ हलचल है हिरकल की तरफ से और वो मुसलमानों के खिलाफ फौजें जमा कर रहा है। एक रवैया ये था कि कांपने लगते, रोने लगते, और उनके आगे माफियां भेजते और कहते जो शर्तें मनवानी है मना लो, हमारी तरफ आंख ना उठाना, और खुदा के लिए ये और हमें एड दो, और तुम ही हथियार दो, तुम्हारे हथियार खरीद के तुम पे चलाएंगे। एक रवैया ये था जिसको आप कह सकते हैं कि डिफेंसिव, नहीं, नबी सल्लम ऑफेंसिव थे। आप डिफेंसिव नहीं होते, जो डिफेंसिव होता है वो हमेशा हारता है। आपने कहा तुम क्या आओगे, हम आते हैं, चलो, और साथियों को ऐलान दे दिया कि चलो चलना है, किधर जाना है सब बता दिया। मैं आप जो मैं जुमले बोलूँगी ना, इसको गौर से सुनिएगा, मैं इस वक्त आपको वो वाक्या नहीं सुनाना चाह रही, वो सुनाऊँगी इसी सीरीज़ में किसी में डिटेल से। लेकिन सहाबा के इस सफ़र के दौरान एक महीना मदीना से लेकर शाम की सरहदों तक तबूक के मुकाम पर पहुंचे। एक एक करके ऊंट भी ज़िबा हो गए, सवारी के तौर पे इस्तेमाल करते थे, वो कटने लग गए। ऊंटों के पेट के अंदर ओझड़ी में एक एक्स्ट्रा पानी होता, वो तक पिया। और आखिर में ये वक्त आ गया था कि सिर्फ एक खजूर, एक खजूर एक दिन में मिलती थी। और खाने वाला उसको खाता खाता, चूसता चूसता, हत्ता कि वो गुठली ख़त्म हो जाती। और बाद में जब ये बातें दूसरों तक पहुंची तो किसी ने सवाल किया कि वो एक खजूर क्या करती होगी। आप सोचे ना, आपको सारे दिन में बस एक खजूर दी जाए तो क्या करती होगी। तो जवाब हमें दामन में झांकने वाला रवैया अख्तियार करने पे माइल करता है। कहने लगे, हाँ ये हमें उस दिन पता चला जिस दिन वो एक भी ना रही। अब मुझे बताइए, ये रोज़ा नहीं है? जो बात मैं कहने लगी ना, उस पर थोड़ी सी तवज्जो रखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पिछले 20, 25, 30 साल से रोज़े रख रहे हैं बट हमारा एक भी रोज़ा सहाबा के उस एक दिन के रोज़े के बराबर नहीं है जो तबूक के सफ़र में और पैदल गर्मी बगैर सवारी और पेट की भूख के साथ गुजारते थे। हमें भी सफ़र अच्छे लगते हैं, हम इंजॉय करते हैं, बट क्यों इतना बड़ा हमारा स्नैक बैग होता है, एपेटाइजर्स, खाने हमने बिरयानी के पतीले कुक किए होते हैं, नरम आरामदेह बसें गाड़ियाँ ट्रेनें जहाज़ है ना। सफ़र अच्छा लगता है कब, जब खाते पीते रहे, बातें करते रहे, जहाँ रुके रुके और मज़े आए। और उधर सबसे बड़ी बार देखे खौफ, पीछे बीवी बच्चे घर में और दुश्मन ना आ जाए और पता नहीं वापस भी आने। और सबसे बड़ी मुनाफिकों ने जो जय में गोइयां की और जो प्रोपेगंडे किए। इतने असाब शिकन हालात में कौन दीन का काम करें जिसने आम दिनों में रोज़ा आदतन नहीं इबादतन किया हो। ये ट्रेनिंग कोर्स है, ये जो रमज़ान फिर आने वाला है ना, ये आपका इस साल का एक और ट्रेनिंग कोर्स है। आप में से जो लोग किसी इदारे से मुंसलिक हैं या आपने कहीं से सीखा है, तो हर साल के कोर्सेज होते हैं। जैसे अब हम लोग नूरुल कुरान के प्लेटफॉर्म से जो काम करते हैं, तो हमारे पास आपको दसियों पेज मिलेंगे, सबीलुल जन्ना 2010, सबीलुल जन्ना 2011, 12, नूरुला नूर। हर कोर्स के साथ आगे ईयर लग जाता है और वो रिपीट होती हैं चीज़ें, साल होते हैं ना। आप अपने रमज़ान को कहिए ट्रेनिंग कोर्स 2017 आने वाला है। और अगर आपने मैंने इसको इबादत समझ के ना किया, तो कल अगर इस्लाम पे कोई वक्त आ गया तो माजरत के साथ हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे। सहाबे कराम इबादत को इतना इंजॉय करते थे, इतनी लज्जत लेते थे उसमें से, कि उनके अंदर एनर्जी आती थी, उनके अंदर शौक आता था और उनको होश ही नहीं रहता था। सहाबी नमाज के दौरान उसके जिस्म से खुबा हुआ हड्डी में तीर निकाल दिया किसी ने, उसको पता ही नहीं चला। हमें जो भूली बिसरी यादें बातें नमाजों में याद आती हैं। चाबी कहाँ रखी है, ढूंढनी है तो 2 नफिल की नियत करें, आपको 4 मिनट के अंदर याद आ जाएगा। बिलीव मी, सारी प्लानिंगें हमारी नमाजों में हो जाती हैं। क्या पकाना, किधर जाना, ज़रा बैठो, मैं 2 मिनट में नमाज पढ़ के आई। ये इबादत नहीं है, ये आदत है, ये सर से बड़ा टालना है। और सहाबा की ज़िंदगी सिर्फ इतनी ही नहीं थी। ग़ज़वे खंदक पढ़ा हुआ है आपने, सूरत अल अहज़ाब, ग़ज़वे खंदक भी कहते हैं उसको, अहज़ाब भी कहते हैं। उस जंग में सहाबी नबी सल्लम के साथ मिलकर खंदक खोद रहे हैं, और इतनी लंबी खंदक एक एक बंदे के हाथ कितने कितने फुट लंबी जगह आती है, और पेट पे पत्थर है। और सहाबी आके कपड़ा उठाता है, कहता अल्लाह के नबी देखे पेट पे पत्थर बांध के ये जगह खोद रहे हो, तो आपने अपना कपड़ा उठाया तो वहाँ 2 पत्थर थे। ये है रोज़े का असर। रोज़ा आपको मुझे ये सिखाता है कि अगर दीने इस्लाम पे कोई मैली आंख से भी देखेगा ना, तो आपने तबूक को याद कर लेना है। और अगर दीने इस्लाम के खिलाफ सारी दुनिया के कुफार और मुलहिद जमा हो के आ जाएंगे ना, तो तुमने खंदक को याद करना है। और जब आम दिनों में वर्कर्स और साथियों की ट्रेनिंग की होती है ना, तो मुश्किल वक्त में बहुत फ़ायदा होता है। मैं इसको बिल्कुल ऐसे लेती हूँ कि जैसे कोई इदारा है, अगर जिस वक्त काम सर पे आ गया उस वक्त आप बैठ के ट्रेनिंग सेशन देने लग जाए तो फ़ायदा होगा। मसलन चलिए इदारे को एक साइड पर करें, जहाज़ जिस वक्त फ़्लाइट का टाइम है 2 घंटे की फ़्लाइट है, अगर उस वक्त सारी एयर होस्टसों और जो भी उनके लोग होते हैं क्रू के, उनको बैठ कर ट्रेनिंग्स देने लग जाएँ तो तो क्या वो इतनी स्मूथ सर्विंग होगी जो होती है? वक्त पढ़ने से पहले देते हैं और वक्त आता है तो आजमाते हैं। बात समझ गए? हर साल एक दफा ये एक शॉर्ट कोर्स करवाया जाता है लाल लकुम तत्तकून का। क्यों? 11 महीने तुम ऐसे तेज होके बैठो कि कोई आंख ना उठा सके। दीन के लिए जिद्दोजहद, दीन के लिए मेहनत, दीन के लिए कुर्बानियां, हिजरतें होती तब है जब इबादत को इबादत समझ के किया जाए, आदत समझ के नहीं किया जाए।